प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए प्रभु में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन मित्रों का भी जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर पत्र के माध्यम से अपने उन आशीषों को हम तक पहुँचाते हैं। कृपया आप इसी प्रकार पत्र के द्वारा अपनी जानकारी हमें देते रहें ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने पाएं। मैं अपने नए श्रोता मित्रों को बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हमने पौलुस के द्वारा लिखे गए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन अर्थात निर्देशों को देखा है। इसमें हमें बताया गया है कि कलीसिया के रूप में हमें किस प्रकार रहना है। सर्वप्रथम हमें बताया गया कि पत्नी को पति के अधीन रहना है और हमें यह भी बताया गया है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और मसीह कलीसिया का सिर है। और हमने आगे देखा कि बच्चों को हमें रिस नहीं दिलाना है, उनको परमेश्वर के डर और भय में, उनके ज्ञान में उन्हें बढ़ाना है। तब हमने और आगे देखा है कि एक स्वामी और एक दास जब मसीह में एक होते हैं, अर्थात जब मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ समानांतर होते हैं, भाई के समान होते हैं, कोई भी ऊंच नीच की भेदभाव नहीं होती है। और तब पौलुस ने हमें इस बात का भी स्मरण दिलाया है कि हमें कलीसिया में किस प्रकार से रहना है, हमें स्थिर रहना है और इस बात के लिए हमें परमेश्वर के उन हथियारों को बांध लेना है, क्योंकि हम एक योद्धा हैं, हम एक सिपाही हैं। हमारा युद्ध इस संसार के उन आत्मिक अंधकार की शक्तियों से है जो शैतान है। इन सारी बातों को हमने अब तक देखा है, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन करते हैं, पिताजी हमारी विनती है कि आप हमें से हर एक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, समझ सके, ग्रहण कर सके, अपने जीवन में लागू करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं। पिताजी आप उन पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें, अपनी शांति और आनंद उनके जीवन में उंडेल दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 16 से 18 पद को निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। विश्वासी का कवच या हथियार आत्मिक है, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। हमें इस कवच में स्थिर रहना है, और यह कवच प्रभु यीशु है, यीशु जो जीवित है। अय्यूब की पुस्तक में शैतान स्वयं कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। परमेश्वर ने हमें कवच देकर सुरक्षा प्रदान की है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, ढाल सब हथियारों को ढांक लेती है। यह ढाल बहुत बड़ी होती थी, 1 दरवाजे के बराबर। यह पैदल सैनिकों की ढाल थी, उसके पीछे खड़ा योद्धा सर्वांग सुरक्षित रहता था। मसीह उद्धार का द्वार और विश्वासी की सुरक्षा का द्वार है जो शत्रु को बाहर रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में इसी तथ्य को दर्शाया गया है। मसीह उद्धार और सुरक्षा दोनों है। विश्वास, जी हाँ, विश्वास हमें द्वार में प्रवेश करने में सहायता करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यह उद्धार है। अब सुरक्षा के बारे में क्या कहें? विश्वास हमें उसके हाथों में सुरक्षित कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। विश्वास हमें प्रभु यीशु को थामे रहने में सहायता करता है। विश्वास हमें उस ढाल के पीछे खड़े रहने में सहायता करता है। यह ढाल शत्रु के सब अग्नि बाणों को रोक देती है। दुष्ट के जलते हुए तीरों, दुष्ट अर्थात शैतान, क्रोध से भरकर तीरों की बौछार करता है। कॉलेज में मेरा एक अति ज्ञानवान प्राध्यापक था। उसने जर्मनी में अध्ययन किया था। मैं उसकी बुद्धि की प्रशंसा करता था, जबकि उस समय मुझे यह बोध नहीं हुआ कि वह एक बौद्धिक भ्रम जाल है। मैं उसका सम्मान करता था, परंतु सच तो यह था कि वह मेरे पांव उखाड़ रहा था। मैं उससे अनेक प्रश्न पूछता था, जबकि मुझे कक्षा में चुप रहना ही अच्छा लगता था। अंततः हमें मित्रता हो गई और हम विचार विमर्श करते हुए परिसर में आवागमन करते थे। मैं उसे प्रश्न पूछता था और वह उत्तर देता था। अंत में मैंने परमेश्वर ही से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, यदि मैं तेरे वचन पर विश्वास नहीं करता तो मुझे बाइबल अध्ययन में अध्ययन करना व्यर्थ है। यह परमेश्वर की ओर से हुआ कि उस समय मैं एक अति बुद्धिमान प्रचारक का प्रवचन सुनने के लिए गया। बुद्धिमान से मेरा अभिप्राय है कि मैंने जिसे कभी सुना ना हो। उससे मैंने सीखा कि जब मुझ पर अग्निबाण छोड़ा जाए और मेरे पास उसका उत्तर ना हो तो मैं विश्वास की ढाल खड़ी करूं, और तब से मैं यही करता आ रहा हूं। मेरा अपना अनुभव अब यही है कि विश्वास की ढाल सब अग्निबाणों को ठंडा कर देती है। मेरे मित्रों, मुझे स्मरण है कि मैं सृष्टि के संबंध में उत्पत्ति के वृत्तांत संबंधित प्रश्नों से अप्रसन्न था। मैं कुछ बातों को स्वीकार नहीं करता। इस कारण मैं सेवा से ही त्याग करना चाहता था। समस्या मेरी सीमित बुद्धि से नहीं थी। उस समय मैं ऐसा ही सोचता था, परंतु मेरा ज्ञान वास्तव में अधूरा था। अतः मैंने विश्वास की ढाल उठाई। हम इसराइल में पुरातत्व विभाग की खुदाइयों को देख रहे थे। जब हम पढ़ते हैं तो इसके विषय में हमें जानना अवश्य होता है। मेरे साथी ने मुझसे पूछा, यदि वे कुछ ऐसी बातें खोज निकालें जो बाइबल का खंडन करती प्रतीत हो तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं विश्वास की ढाल उठाऊंगा और वह दुष्ट के जलते हुए तीर को बुझा देगी। मैंने जीवन में यही सीखा है कि जब एक जलता हुआ तीर बुझा दिया जाता है तो उसके बाद मुझे सही उत्तर मिलता है। मेरे प्रियो, मुझे वह समय स्मरण आता है जब यूहन्ना के प्रति एक विवादित प्रश्न था, क्या यूहन्ना ने ही यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा है? आज तो यह निश्चित है कि यूहन्ना ने ही सुसमाचार लिखा है, परंतु एक समय ऐसा भी था कि मैं उस पर संदेह करता था। दुष्ट के अग्नि बाणों की तीव्र वर्षा होती थी और होती रहेगी। उन्हें रोकने का एकमात्र साधन है विश्वास की ढाल। यह एक विशाल द्वार स्वरूप है। यूनानी पैदल सैनिक ऐसी ही ढाल लेकर युद्ध में जाते थे और एक दूसरे के साथ खड़े होकर ढाल सामने कर देते थे। जब शत्रु तीर चलाकर खाली हो जाता था तब वे आगे बढ़कर युद्ध करते थे और निश्चित विजय प्राप्त करते थे। दुष्ट के अग्निबाण का सामना करने की यही एक विधि है। उद्धार का टोप, टोप सिर की रक्षा करता है। परमेश्वर मनुष्य के मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करता है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर मन को प्रभावित करता है, परंतु वह हमारी बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। संपूर्ण धर्मशास्त्र में परमेश्वर ने मनुष्य की बुद्धि से तर्क की बातें की है। यशाया की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवाने रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत रंग के हो जाएंगे। और तब प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 25 पद में वह कहता है, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। पौलुस फेलिक्स के मन और मस्तिष्क दोनों ही से विवाद कर रहा था। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे एक मित्र जो प्रोफेसर हैं कहा करते थे, विश्वास अंधकार में छलांग लगाना है, यह सच नहीं है। परमेश्वर आपसे अंधकार में छलांग लगाने को नहीं कहता है। सच तो यह है कि वह कहता है, यदि अंधकार में छलांग लगाना पड़े तो ऐसा मत करना। परमेश्वर तो आपको ज्योति में छलांग लगाने को कहता है। परमेश्वर के पास आपके लिए ठोस आधार है। यह कैसी अद्भुत बात है। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु पापी का उद्धार है, वही तो है जिसका इसमें महिमान्वन होना है। टोप की कलगी प्रभु यीशु है, वह हमारे लिए उद्धार बनाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। उसके जन्म से पूर्व ही उसे उद्धारकर्ता कहा गया है। पौलुस अपने एक और पत्री थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखी पत्री में भी इस टोप को उद्धार का टोप कहता है। 1 थिस्सलुनीको 5 अध्याय उसके 8 पद में, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। मेरे प्रियो, अब तक कवच के जितने हथियारों का उल्लेख किया गया है वे सब आत्म सुरक्षा के लिए हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? यह सब उसकी सामने की सुरक्षा के लिए है। उसकी पीठ असुरक्षित है, पीठ दिखाने वाले के लिए सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा विश्वास करें कि पीछे हटने वाले विश्वासी पर बैरी का हावी हो जाना आसान है। अब वार करने के 2 हथियार हैं। पहला है परमेश्वर का वचन, जिसे आत्मा की तलवार कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रभु यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु यीशु ने शैतान द्वारा परीक्षा लिए जाने के समय परमेश्वर के वचन को सामने रखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय के 16 और 19 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि हर्मगिदोन के युद्ध में उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, वह उस तलवार से विजय प्राप्त करता है। यह तलवार क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। हमें अपने मुंह से इसी तलवार को चलाना है, न कि सही का तलवार। परमेश्वर का वचन एक शक्तिशाली शास्त्र है, हमें इसका उपयोग करना है। हमारा दूसरा शास्त्र प्रार्थना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्म प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर को आवश्यकताओं की सूची पकड़ाना नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें अपने बैरी को पहचान कर आत्मिक सामर्थ के लिए परमेश्वर को थामना है कि हम आत्मिकता में परमेश्वर की परिपूर्णता प्राप्त करें। पौलुस यहाँ प्रार्थना और विनती में अंतर प्रकट करता है। प्रार्थना आम अभ्यास है, परंतु विनती विशेष निवेदन है। सब प्रभावी प्रार्थनाओं को आत्मा में होना है। योद्धा का उदाहरण, पौलुस प्रभु यीशु का एक अच्छा योद्धा था। यहाँ हमारे लिए पौलुस के अनुभवों का उदाहरण है। आइए हम पढ़ें इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। ध्यान दे, मेरे लिए भी। अब पौलुस अपने लिए भी प्रार्थना का निवेदन करता है। इस पत्री के अंत में वह अपने विषय में कुछ कहता है। वह अपने वादी होने या देह के कांटे के बारे में विनती करने की याचना नहीं करता, परंतु उसका प्रार्थना निवेदन है कि उसे सुसमाचार की सेवा करने का साहस प्राप्त हो, सुसमाचार का भेद बता सकूं। सुसमाचार पुराने नियम में एक भेद था जो अब प्रकट है। नया नियम प्रकट करता है कि प्रभु यीशु सब पापों के लिए मर गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पौलुस इसी सुसमाचार को सुना रहा था। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। पौलुस ने आत्मिक युद्ध की चर्चा की है और यहाँ वह बैरी के संहार का अनुभव कर रहा है। लिखते समय में भी मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। पौलुस प्रार्थना का निवेदन इसलिए करता है कि वह निर्भीकता पूर्वक सुसमाचार को सुनाए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुखिकुस ने इफिसुस की कलीसियाओं को पौलुस का पत्र ही नहीं दिया, वरन उसने प्रेरित पौलुस के भविष्य के बारे में व्यक्तिगत जानकारी भी दी थी। इफिसुस की कलीसिया का पास्टर तुखिकुस आरंभिक कलीसिया में प्रभु यीशु के विश्वास योग्य सेवकों में एक उदाहरण है। प्रेरित पौलुस को उस पर बहुत विश्वास था। वह तुम्हारे मनों को शांति दे। तुखिकुस इफिसुस के विश्वासियों के मन में पौलुस के बारे में जो भय था उसे दूर करे। आरंभिक कलीसिया में भाईचारे का प्रेम पौलुस की इस पत्री की अंतर्निहित भावना है। पौलुस के मन में उन भाई बहनों के लिए गहरी चिंता थी। मेरे मित्रों, अब हम इस पत्री के अंत में आते हैं और इसमें हम आशीर्वाद को देखते हैं। सेना अध्यक्ष डॉलस मार्क आर्थर कहते थे कि पुराने सैनिक मरते नहीं, वे विलोप हो जाते हैं। पौलुस की विदाई का संदेश अब सुनिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। मेरे प्रियो, पौलुस का शोक गीत 2 तिमोथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 6-8 पद में है, अब मैं अर्ग के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु के अच्छे योद्धा को कैसा होना है और उसके प्रतीक्षा में कौन सा प्रतिफल रखा गया है। अंत में वह 2 गुना आशीर्वाद देकर समाप्त करता है। सुसमाचार के अधिकांश अक्षर इसमें काम में लिए गए हैं, शांति, प्रेम, विश्वास, अनुग्रह। यहाँ आशा का उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि विश्वासी स्वर्गीय स्थानों में है जहाँ यह सब पूरा हो गया है। शांति यहूदियों का अभिवादन शब्द था। पापी को परमेश्वर की शांति पाने से पूर्व अनुग्रह का अनुभव पाना है, यही वह शांति है जो सारी समझ से परे है। प्रेम, पद 23 में व्यक्त प्रेम का अर्थ है अन्य विश्वासियों से प्रेम करना, यह पवित्र आत्मा का फल है। पद 24 में व्यक्त प्रेम शब्द का अभिप्राय प्रभु के लिए विश्वासी के मन में उपस्थित प्रेम से है। यह शब्द आत्मनिष्ठा से होता है। विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास जिसके द्वारा सक्रिय प्रेम उत्पन्न होता है, यह पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह से प्रवाहित होता है। अनुग्रह शब्द इस पत्री का मुख्य शब्द है। इससे पत्री का आरंभ होता है, एक अध्याय उसके 2 पद में, और पत्री का विषय भी यही है, 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, और अंत भी इसी से होता है। यही परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार दिलाता है और हमें थामता है। मेरे प्रिय मित्रों, पौलुस ने इस पत्री के माध्यम से हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात का स्मरण दिलाया है कि हम एक विश्वासी को अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है, और इसके साथ हमें मसीह के प्रेम और संगति में बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को थामना है। हमें इस संसार में रहते हुए उन अंधकार की शक्तियों से युद्ध करना है, जो कि देह और लहू से नहीं परंतु अंधकार की शक्तियों से है। आइए आज हम इस पत्री के वचन के अनुसार से अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करें, और निश्चय जाने कि आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा से, पौलुस के द्वारा से मुझे और आपको समझाना चाहता है, स्मरण दिलाना चाहता है, ताकि हम उसमें और बलवंत किए जाएं, कठिन पल में हम स्थिर रह सकें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और इसके साथ ही इफिसियों की पत्री भी समाप्त होती है। अगले अध्ययन में हम एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सब प्रभु की निकटता में बने रहें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, कभी हिम्मत न हारना। बनाएगा वही हिम्मत न हारना, रास्ता बनाएगा वही।